श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज 9 नवंबर 1987 रात्रि 7:30 बजे दिल्ली।
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमह न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
एक भाई का पूजा आया है, बड़े अच्छी बात पूछी है। ऐसे भाइयों से नम्र निवेदन है कि पहले भगवान का नाम लिखे। कुछ भी काम करना हो तो भगवान को याद कर काम करें। लिखने को बैठे तो ओम श्री राम श्री परमात्मे नमः श्री गणेशाय नमः आदि पहले पहले शब्द लिखना चाहिए। हरेक भाई बहन से यही कहना है, पहले भगवान का स्मरण करो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोचनम्। परमात्मा की स्मृति है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करना है। हर एक काम कहते हैं ये श्री गणेश हुआ तो श्री गणेश पहले आरंभ होता है। ऐसे भगवान का नाम लेना चाहिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमोच्यते। बात पूछी है कि जैसे है मूर्ति पूजा है गुरु पूजन है तो ये क्या जड़ की उपासना नहीं है? अर्थात ये जड़ के पूजन से चिन्मयता की प्राप्ति कैसे होगी? चिन्मय तत्व जड़ नहीं, वो चेतन तत्व है। तो चेतन तत्व की प्राप्ति से ही ये कृतकृत्य प्राप्त प्राप्त ज्ञात ज्ञात भी हो सकता है, जड़ सच गज होगा। तो क्या ये मूर्ति पूजा गुरु आदर गुरु पूजन गुरु की महिमा क्या ये जड़ नहीं है क्या? ये प्रश्न है। दूसरी बात पूछिए कि हमारे में काम लोभ क्रोध आदि आदि जो वृत्तियां है इसका कैसे नाश हो और चिन्मय तत्व की प्राप्ति कैसे हो? ऐसी बात पूछी। अब इस पर थोड़ा गंभीर विचार करें, अपने पक्षपात नहीं करना है किंतु सोचना है कि मूर्ति पूजा गुरु पूजन करते हैं ये हम जड़ता का नहीं करते हैं। और ऐसे कुछ भी आप जड़ चेतन का विचार करोगे तो मन बुद्धि को लगाओ तो मन बुद्धि कौन से चेतन है भाई? ये सब प्रकृति का कार्य है। महाभूताय निहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचरा। ये सब जड़ है क्योंकि तो भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति सदा अपरेयम। ये अपरा प्रकार परमात्मा की प्रकृति है। तो अहम अहम जो मैं करते हैं ये भी जड़ है और जिससे निर्णय करते हैं वो बुद्धि भी जड़ है और जिससे चिंतन करते हैं वो मनोबुद्धि भी जड़ है। परंतु जड़ को हम पूर्णता नहीं बताते, हम जड़ता में ही एक उलझे हुए हैं, तो जरा अंश में भी जो चिन्मय की तरफ ले जाने वाला अंश है उसी को पकड़कर चिन्मय की तरफ चलते हैं। तो विचार करो, तो वेदों का अध्ययन करो, तो नाम का जप करो, तो परमात्म तत्व का चिंतन करो, तो एक चिन्मय तत्व है सच्चिदानंद घन परमात्मा, सत चेतन आनंद घन रूप से है। ऐसे चेतन का चिंतन करो तो भी करोगे तो मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा ही। तो मन और बुद्धि क्या चेतन है, क्या समझे? अपरा प्रकृति बताया है, मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति इयम् मे भिन्ना प्रकृति सदा अपरा इयम् अतस्तन्याम प्रकृति बुद्धि मे परा जीव भूताम। जीव रूप है वो है परा प्रकृति। तो ये अपरा प्रकृति में उलझा रहेगा तब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो चिन्मय तत्व में पहुंचने के लिए हमें जैसे मन बुद्धि आदि की वृत्तियों की जरूरत है, ऐसे ही गुरु की जरूरत है। गुरु जड़ का नाम नहीं है। संतों ने कहा है कि जे तू चला देह को तो देह खेह की खान, देह तो मिट जाएगा। जे तू चला शब्द को तो शब्द ब्रह्म करमान, शब्द का अगर शिष्य है तो शब्द ब्रह्म है। वो शब्द भी जड़ है परंतु उसका लक्ष्य चेतन है। तो चिन्मय तत्व की प्राप्ति के लिए गुरु की बड़ी भारी आवश्यकता है। जैसे नींद है वो जड़ है तो उसको आवाज दी जाए वो भी जड़ है, उसको हाथ पकड़ ऐसे हिलाया जाए तो भी जड़ है। पर उस जड़ में ताकत है कि वो चिन्मयता तक पहुंचा देता है, मन जगा देता है। कैसा ही क्यों ना जन नींद सोता, वो नाम लेते ही सुबोध होता, नाम लेते ही बोध हो जाता है। तो नाम जड़ है परंतु शब्द में अचिंत शक्ति माना, शब्द में विलक्षण शक्ति है। कितनी शक्ति है ऐसा माप तो नहीं। हम अपनी विद्या को विद्यार्थी तक पहुंचा देते हैं शब्द के जरिए, और उनको समझा देते हैं शब्द के जरिए। तो शब्द जड़ से जड़ होता हुआ भी चिन्मय तत्व को प्राप्त कराता है। ऐसे ही गुरु है, वो शब्द कहता है, वो चरा देता है। तो गुरु का शरीर ही पूज्य नहीं है, उनका सब कुछ पूज्य है। क्यों? उस शरीर के माध्यम से हमें चिन्मय तत्व की प्राप्ति होती है। और वे संत महात्मा पुरुष कभी कभी भी शरीर से गुरु नहीं बनते, मन से भी गुरु नहीं बनते। वे तो जो जानना चाहते हैं उस जिज्ञासा के अनुरूप बात कह देते। जैसे भूखे को अन्न दिया जाए, प्यासे को जल पिलाया जाए, जैसे रोगी को औषध दिया जाए, ऐसे वो जो मुक्ति चाहता है, कल्याण चाहता है, चिन्मय तत्व को प्राप्त करना चाहता है, उसको जड़ से अलग कर चिन्मय तत्व की तरफ लक्ष्य करा देता है। वो ऐसा नहीं तुम मेरे को गुरु मानो, ऐसा वह आग्रह नहीं होता। और मानो वो चेतन है उसको मनाते। ऐसी मूर्ति पूजा में हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति पूजा करते तो कहते हैं भाई अमुक पहाड़ में से अमुक खोदने वाला सिलावट लाया है, अमुक ने मूर्ति घड़ी है, ये मूर्ति तुम कल्याण करता करना, ऐसा नहीं कहते। वह सशंक चक्रम सकिन को मूर्ति में परमात्म तत्व का पूजन करते हैं। ऐसे गुरु में परमात्म तत्व का पूजन करते हैं। ऐसे ही संसार मात्र में व्याप्त परमात्मा को समझकर सेवा करे, वो संसार की सेवा नहीं है, वो चिन्मय परमात्मा की ही सेवा है। दीन दुखियों को देखकर दया कर और उनकी सेवा करते हैं तो दीन दुखियों को ही देखता है, वो तो जड़ की सेवा हो सकती है नहीं, वो जड़ की। पर दीन दुखिया में परमात्मा को समझकर पूजन करता है, वो तो साक्षात परमात्मा का पूजन है। भाव क्या ही जनार्दन, भाव भोगता है भगवान, उस भाव को ग्रहण करते हैं। आप माँ का आदर करते हो तो माँ का शरीर तो पार्थिव है, पांच भौतिक है। पिता का आदर करते हो तो पिता भी पांच भौतिक है। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उसमें पितृ शक्ति है, मातृ शक्ति है, उसको लेकर करते हैं, वो अंत में चिन्मय तत्व तक पहुंचता है। ऐसे मूर्ति पूजा में तो साक्षात भगवान का पूजन होता है। जैसे भगवान के अवतार माने हैं मत्स्य कच्छ वराह आदि, ऐसे मूर्ति में भगवान का अवतार होता है। ये अर्चावतार कहलाता है। मूर्ति में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं मूर्ति में, परंतु उनकी भावना भगवान की होती है तब, और जब तक जड़ भावना रहती है तब तक भी भगवान उसकी पूजा को ग्रहण करते हैं। एक भाई भगवान का पूजन करता था मूर्ति में, तो कल्पना करो कि राम जी का पूजन करता था, तो राम जी का पूजन करते वर्ष बीत गए परंतु राम जी प्रकट नहीं हुए, तो किसी ने कहा अरे तुम कृष्ण का पूजन करो, वो भगवान जल्दी आ जाते हैं। तो कृष्ण का पूजन करने लगा तो वो ऊपर आया था, उसमें तो राम जी की मूर्ति रख दी और नीचे सामने पूजन करने लगे, वो कृष्ण भगवान की मूर्ति पूजा रख दी। अब वो मूर्ति पूजा किया तो धूप किया उसने, वो धूप की गंध ऊपर को जाने लगी, अब धुआं तो ऊपर को जाएगा ही, ऊपर को जाने लगा तो उसने कहा था मैं तो पूजन कृष्ण की करता हूँ और ये तो धूप चाहता है राम जी को, तो राम जी का मैंने पूजन करता नहीं क्योंकि ऊपर तो हुए नहीं, अब मैं तो कृष्ण का पूजन करता हूँ। ऐसे कर उसके मन में आया कि प्रकट तो होते ही नहीं, ऐसे ही धूप ले लेते हो, तो वो खड़ा हो करके उसने रुई लेकर और वहां राम जी के मूर्ति के नाक रख दिया कि ये तुम ले नहीं सकते, लोने लाए दूंगा नहीं, तुम प्रकट नहीं होते बड़े। तो भगवान प्रकट हो गए, राम जी उसी क्षण प्रकट हो गए। ये कोई विधि नहीं है कि नाक में रुई डालने से भगवान प्रकट हो जाए, ये कोई शास्त्र की विधि नहीं है। तो बात क्या है, अरे उसकी भावना होगी कि उनको सुबुद्धि लेते हैं, सुबुद्धि लेते हैं तो सुबुद्धि जीता ही लेगा, प्राणी होने से लेगा, तो भगवान प्रकट हो गए उसके भावना अनुसार। अब वो राम जी की मूर्ति से पूजा करता है तो भी वे आरंभ भगत कहलाता है। अर्चायाम ये हरे, अर्चायाम हरे यह पूजा में श्रद्धेय थे न तद भक्तेषु चान्येषु प्राकृत स्मृत। ये भागवत एकादश में आ रहा है, वो केवल मूर्ति में ही भगवान की पूजन करता है, भक्तों में नहीं करता और प्राणियों में भी भगवान का पूजन नहीं करता, केवल मूर्ति में पूजा करता है। तो उसको आरंभ भक्त कहा है, कब तक कि जब तक भगवान में भक्तों में संसार में भगवान को नहीं देखता तब तक आरंभिक भक्त है। पर आरंभिक भक्त हो गया, वो श्री गणेश सुबह हो गया, अब इसकी सोते हुए भगवान को व्यापक मानेगा, सब जगह संत महात्माओं को गुरुजनों को विशेषता से मानेगा तो उसकी पूजन अधिक हो जाएगी। साते सब मोहि मय जग देखे, सबरी के सामने भगवान राम ने नौधा भक्ति का वर्णन किया, उसमें नौ में सातवीं भक्ति है सब मैं मोहि देख, मेरे को सब संसार में परिपूर्ण देख है, ये सातवीं भक्ति है। सब में परिपूर्ण देखते हुए भी क्या कहा कि सब में साथ हैं, सब में मोहि मय जग देखे, पर मोहते अधिक संत कर लेखे, मेरे से संतों को अधिक देख। ख्याल किया आपने, संत क्या है, वही तो संसार के शरीरधारी, वो ऐसे संसार में तो सब मोहि मय जग देखे, पर मोहते अधिक संत को नहीं, क्यों संत के द्वारा चीज मिलती है, जब सब जगह पृथ्वी में है, पर जहां कुआ वहां मिलता है, पाइप में जल भरा हुआ है, परंतु पाप में भरा हुआ भी जहां कल लगी वहां मिलता है, और जगह मिलता नहीं। ऐसे गुरुजनों में भगवान के श्री विग्रह में, संत महात्माओं में, दीन दुखियों में, अपाहिजों अरक्षितों में परमात्मा मिलते हैं। ये परमात्मा के मिलने के स्रोत है। परमात्मा सब जगह है, और सब जगह होते हुए भी यह विशेषता है, जैसे भगवान सब में परिपूर्ण व्यापक है, तो शरीर में सब जगह परमात्मा है, परंतु फिर भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जो तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं। तो भगवान हृदय में रहते हैं, हाथ पांव में नहीं रहते, सिर में नहीं रहते, क्या पेट में नहीं रहते, पीठ में नहीं रहते, ऐसा नहीं है, सब जगह है परिपूर्ण। पर हृदय एक उपलब्धि स्थान है, वहां सुगमता से प्राप्त होते हैं। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति का ये शास्त्रीय उपाय है, मूर्ति में करो, गुरु में पूजन करो, संसार में पूजन करो। 12 प्रकार की मूर्ति का पूजन बताया है, उसे किसी के रुद्र में कर लो, अग्नि में कर लो, एक चबूतरा बनाकर कर लो, मूर्ति में कर दो। मूर्ति भी लेख्या लेख्या से वेद बता दिया, तो वेद का आदर करना भी मूर्ति का आदर करना है, और सुंदर बनाई हुई एक तस्वीर है उसका पूजन भी भगवान का पूजन है। तो लिप्या लेप और लेख्या ऐसी मूर्ति बताई, तो वेद का आदर करना भी मूर्ति का आदर है, और तस्वीर का आदर भी मूर्ति का परमात्मा का आदर है, और मूर्ति पूजा भी परमात्मा का ही आदर है। कोई हमारे घर पूजनीय आदरणीय आता है, आपके सगा संबंधी भी आते हैं, तो उनका आदर शरीर से ही करते हैं, शरीर का ही करते हैं, उसका कैसे हो गया, आइए सब बैठाइए, तो शरीर को ही ऊंचे आसन पर बैठाते हैं, शरीर को ही भोजन देते हैं, पूजन करते हैं, तो शरीर का थोड़े करते हैं वहां, उनमें जो है वो हमारे पूजनी वो है, वो प्राण निकलने पर उसी को बाल देते, जला देते हैं, लकड़ीदार काट आग लगा देते हैं, तो उसका पूजन करें, जब तो आग क्यों लगाना, पूजन करें उसका, वो पूजन उसका नहीं, भीतर जो आत्मा है उसी का होता है। ऐसे मूर्ति में, वेदों में, सब जगह पूर्त परमात्मा के, गुरु में, संत महात्माओं में, संसार में, दुखियों में, तीनों में वो परमात्मा है। उस परमात्मा की तरफ लक्ष्य रखते हुए वे परमात्मा का पूजन करते हैं, तो वो जड़ का पूजन नहीं हुआ। अरे जो जड़ समझते हैं वो पूजा नहीं करते, जो मंदिर में मूर्ति है उसको जड़ मानते हैं, वे मूर्ति पूजा नहीं करते, कहा भगवान का पूजन नहीं करते, और मूर्ति पूजा करते हैं। मकान को सुंदर सजाना और सजा हुआ मकान अच्छा दिखता है, ये मूर्ति पूजा है। फैशनदार कपड़े बढ़िया पहनना ये मूर्ति पूजा है। आप कोई भाई ध्यान दें, विचार करें, आप अपने सजाते शरीर को ये मूर्ति पूजा है, ये ठाकुर पूजा नहीं है। कितना समय लगा देते, ये मूर्ति पूजा है, ये ठाकुर पूजा नहीं है। कोई सिवाय मूर्ति पूजा और क्या है आप बताओ? जड़ चीजों में सुंदरता को देखते, बच्चे को देखकर राजी होते, स्त्री को देखकर राजी होते हैं, ये क्या है? ये मूर्ति पूजा है, इसे कल्याण नहीं होगा। मूर्ति पूजा करने वाले मूर्ति की पूजा नहीं करते, भगवान का पूजन करते हैं। तुम उसको समझ नहीं सकते। वेद शास्त्र है, उनको देख करके आदर करते हो, ऊंचा रखते हो, पढ़ते हो, तो स्याही क्या चेतन है? क्या पत्र उसके चेतन है? क्या वे शब्द चेतन है? उसका आदर करते हो, किसका आदर है? वो परमात्मा तत्व का आदर है, उसमें चिन्मय तत्व का आदर है, उसका पूजन हम करते हैं, कागजों का पूजन नहीं करते हैं। जहां कहीं आप प्रभावना करोगे तो रहते हुए परमात्मा है, सब में चिन्मय उसका ही पूजन होता है, वो ही पूजन ग्रहण करता है और उसी से ही कल्याण होता है। देखो जिस भाषा में जो समझता है उसी भाषा से उसको समझाया जाए तो वो सुगमता से समझ लेता है, और वो भाषा नहीं जानता और हम समझावे तो वो समझ नहीं सकता। तो मनुष्यों का व्यवहार जड़ता को लेकर के, रूपये जड़ है कि चेतन है, का मूर्ति पूजा नहीं मानते। क्या रूपयों के ऊपर, नोटों के ऊपर लिखी हुई मूर्ति है उसको नहीं मानते? तो साफ कागज को लेकर ले जाओ, कुछ मिलता हो तो, और मूर्ति से ही मिलता है, उससे जो रुपये 10 रुपये 20 रुपये अगर आज चीज वस्तु लाते हो तो मूर्ति वाले कागज से लाते हो, साफ सफेद कागज से लाते हो, तो मूर्ति में शक्ति है। आप रुपये में शक्ति मानते हो स्थूल पदार्थों की, तो वहां मूर्ति में चिन्मय पदार्थ की शक्ति मानते हैं भक्त लोग, वह उसका पूजन करते हैं। नोट को कीमती मानते हैं तो कागज को कीमती मानते हैं क्या? और कागज को कीमती मानते हैं, उनके अंक लिखे उनको मानते हो, ऐसे उसके भीतर परमात्मा है उसको मानते हैं। ये जगत सब साथ कागज है, मिट जाएगा, परंतु मिट जाने से क्या परमात्मा मिट जाएगा? वो सब में रहता है। उस परमात्मा तत्व को जानना है तो हमें खोज परमात्मा तत्व की करना है। आपकी रुचि न हो मैं मानू, हमारा तो भाई कभी आग्रह नहीं रहता कि तुम मूर्ति में ही पूजन करो। तुम्हारा जहां विचार हो, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोय, और जही जीव उधरे तही ढिक प्रगट हो। आप जहां निश्चय करते हुए अब खंभे में प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए तो खंभे का पूजन करें? खंभे का नहीं है, पूछा पिताजी कहाँ है, प्रहलाद कहते कहाँ नहीं है, इसमें खंभे में तो में मोह में खड़े खंभे में सर्व रूप व्यापक सब में व्यापक है, तो खंभे में खंभे को काट दे तेरा भगवान भी कट जाएगा, वो तलवार मान ले तो भगत सिंह प्रकट हो गए। तो भगवान तो सब जगह है, जो के क्यों है, लेकिन भावना जहां रहती है वहां प्रकट हो जाते हैं। कोई तीर्थों में मानता है तो वहां तीर्थों में प्रकट हो जाते हैं भगवान, कोई वेदों की दिशा मानता है वेदों से भगवान प्रकट हो जाए, कोई प्रणव में ओम में भगवान मानते तो वहां प्रकट हो जाए, राम नाम में मानते तो वहां भगवान प्रकट हो जाए। आपकी भावना जहां परमात्मा लेकर के जाएगी वहां भगवान प्रकट हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा तो वहां है ही, परमात्मा का अभाव कौन से देश में कौन से काल में, तो सब चीजें परमात्मा व्यापक है, तो व्यापक होने से मूर्ति में नहीं है क्या? कहीं ऐसा लिखा है कि मूर्ति के सिवाय सर्वव्यापक परमात्मा है, गुरु के सिवाय और जगह सब परमात्मा है, गुरु और मूर्ति में नहीं, ऐसा आया कहीं? सब जगह है, तो जहां एक जगह आपकी भावना बनी तो एक जगह तो पूजन आपने शुरू कर दिया, और जो सब जगह है कहता तो है, पूजन कहीं नहीं करता, तो उसे तो एक जगह मानना शुरू कर दिया, इतना काम उसको तो आरंभ हो गया, आपकी बात ही बात रहती आरंभ हुआ ही नहीं। पीपल में पूजन करता है तो पीपल उत्सव चलाता है, नमस्कार करता है, एक जगह तो भगवान को माना परमात्मा को, अरे वो सब जगह है तो अभी आरंभ हुआ है, थोड़ी जगह मानते हुए सबको मानेगा। अब तो सीखने वाला सीखा तो सीखना तो शुरू हो गया उसका, अब पूर्णता तो सब पूर्ण विद्या पढ़ेगा तब होगा, परंतु तो आरंभ तो हो गया ना। ऐसे मूर्ति का पूजन करता है जी, पीपल में पूजन करता है, तीर्थों में पूजन करता है, गुरुजनों में पूजन करता है, माता पिता में पूजन करता है, संत महात्माओं में, ब्राह्मण में पूजन करता है, तो किसी जगह तो शुरू हुआ, अब वो पूर्ण हो जाएगा। परंतु वो जड़ को लेकर नहीं हुआ है, और जड़ को लेकर पूजन पूजन नहीं है, वहां चिन्ह में तत्व को लेकर पूजन है, इस वास्ते जड़ता की तरफ नहीं जाता। आपका मन अगर नहीं मानता था मत पूजो, जहां आपका बात है वहीं पूजो। अभी जो मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो क्या मेरी जबान चिन्मय है, क्या आपके कान चिन्मय है, क्या ये जड़ नहीं है? ये जड़ तो है, पर हमारा कान और जबान इज नहीं, कान और जबान, जबान के द्वारा कहना, कानों के द्वारा सुनना, उस परमात्म तत्व को लेकर के है, तो ये जड़ का पूजन नहीं हुआ, ये चिन्मयता का पूजन है। सत्संग के द्वारा बड़ा भारी काम होता है, तो सत का संग है ये जबान और कान तो असत है, ये तो नाशवान है, ये तो मर जाएगा, लोग जला देंगे, फिर सत का संग कैसे हुआ? तो बाणी के कानों के द्वारा हम सत चर्चा करते हैं, शरीर के द्वारा सत कर्म करते हैं, मन के द्वारा सत चिंतन करते हैं, ये सत कर्म सत चर्चा सत चिंतन करते हैं सत्संग के लिए, सत में तत्परता से लग जाए उसके लिए, तो अंत में सत चल जाए, तो वो सत जो परमात्मा परिपूर्ण है वो मान लेते इस बात को, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, ये माता है ना, माताओं को बच्चा माँ कहता है, मदर कहता है, या कहता है, माई कहता है, आई कहता है, ये नाम है कई तरह। आपने देखा होगा, हमने देखा है भाई, माँ को बाई कहते, बाई कहते, और माँ बोलती, बाई कहने से माँ बोलती, और बाई कहते हुए भी वो माँ के भाव से कहता है, और सुनने वाली माँ पुत्र भाव से ही पालन करती। कई कई छोरा माँ को भाभी कहते, क्यों छोटे छोटे देवर भाभी कहते हैं, वो भी भाभी कहता है, तो भाभी कहने से क्या माँ उसको देवर मानती है, और वो क्या भाभी कहने पर भी मेरे बड़े भाई की स्त्री ऐसा मानता है, वो तो माँ ही मानता है, अब बोलने में भाभी कहता है। तो किसी नाम से कहे, एक हमारी बहन साधारण स्थिति वाली पढ़ी लिखी भी नहीं, वो भी बालक के शब्दों की तरफ नहीं देखती, भाव की तरफ देखती है, तो हम भगवान का पूजन करते हैं, भगवान हमारे भाव की तरफ नहीं देखेंगे, पत्थर की तरफ देखेंगे। अब यह सोचो, वो अपना पूजन मानते हैं, मेरा ही पूजन करता है, तो किसी जगह कोई आदर करता है और भगवत बुद्धि करता है, तो भगवान तो वहां है ही, उसका तो अभाव कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, वो सदा भाव रहेगा। वो मूर्ति चाहे बिगड़ जाए, चाहे संसार बिगड़ जाए, चाहे मिट जाए, परमात्मा भाव कैसे होगा, वो तो सदा रहता ही है, और सदा रहता है, उसी को लेकर वो पूजन करता है। इस वास्ते वो जड़ता का पूजन नहीं हुआ। जड़ता का पूजन जो राग द्वेष है, ये है, किसी वस्तु में राग है ये जड़ता का पूजन है, किसी से द्वेष है ये भी पूजन है। हो जैसे राग होता है उसकी सत्ता मानने से, ऐसे द्वेष भी उसकी सत्ता मानने से होता है। द्वेषा चैद्या देवनिर्वाह सुषुपाल आदि द्वेष के कारण कल्याण को प्राप्त हो गए। भयात कंसा वो भय के कारण से हो गया, पर भय के कारण से किया चिंतन भगवान का, वो भगवान का चिंतन किया तो भगवत चिंतन है, वो भगवत प्राप्ति करा देगा किसी भाव से किया हो। ऐसे समझी के भगवान को माने भगवत प्राप्ति हो जाए। संतों ने बड़ा एक सुंदर वर्णन किया, वो एक याद आ गई बीच में। जैसे गंगा स्नान करने वाले हैं उनके लिए शास्त्रों में माघ महात्मा था। माघ के महीने माघ मकर गत रवि जब हुई तीर्थ तो पते आव सब कोई। माघ के महीने जब मकर संक्रांति होती है, सूर्य भगवान मकर के राशि पर जाते हैं। मेघ वृग मिथुन कर्क सिंह कन्या तुल बसी मकर कुंभ में, तो मकर राशि पर सूर्य जाता है माघ के महीने, तो उसमें स्नान का बड़ा महात्म्य है। उस महात्म जो मेघ का भी है महाराज महात्म्य, बैसाख के महीने में भी स्नान करे गंगा जी का बड़ा महात्म है। तो जाने दो क्या सूरज क्या नहीं है, बैसाख का स्नान भी लोग करते हैं, माघ स्नान भी करते हैं, काती स्नान भी करते हैं। अब गंगा जी में जाकर जहाँ ऋषिकेश में हम लोग जाते हैं, गीता भवन में रहते हैं, वहाँ गंगा जी में जाकर माघ के महीने आप स्नान करो, वो जो दोनों तरफ पहाड़े फूंक आती है ठंडी ठंडी हवा, और वो ठंडा बर्फ का जल, वहां जाकर आप स्नान करो तो कैसा आनंद आता है। फिर आनंद कहा है आफत है एक तरह की, ऐसा स्नान करने काम पड़ा तो हाथ से कपड़ा पकड़ना मुश्किल हो गया। ऐसे हाथों की हाथ होता नहीं जैसे कपड़ा पकड़ ले, ऐसी ठंडी होती है और यहाँ मरा खून इकट्ठा होता है, अंगड़ियां ऐसे हो जाती है। स्नान करते हैं तो वैसा का स्नान क्या उतना महत्व देने वाला नहीं होता, तपत पड़ती है गंगा जी में जाकर पड़ते हैं, शांति मिल जाती, पी लेते हैं नहा लेते हैं तो एक बड़ा आराम मिलता है। महात्म तो बैसाख का भी वही है, और जो बैसाख का है वही माघ का है, और जो माघ का महात्म है वही बैसाख का महात्म है। परंतु माघ के महात्म में बड़ी मुश्किल है मना, और बैसाख में तो बड़ा आनंद होता है। ऐसे भगवान का भैर रूप से द्वेष रूप से चिंतन करते हैं, भय से चिंतन करते हैं, वे माघ का स्नान करते हैं, और प्रेम से करते हैं भगवान का चिंतन, वो वैशाख का स्नान करते हैं। माधव कम थोड़ा ही है, पर प्रत्यक्ष मार्ग कैसा आएगा, जो वैशाख के महीने गंगा जी पीता है, गंगा जी में स्नान डुबकी लगाता है, उसको जो आनंद आता है वैशाख के महीने चार पांच बजे सुबह जल्दी के समय उस हवा ठंडी में माघ के महीने नहाता है तो वान लाता है, थोड़ी देर और बैठो जल में, बैसाख में बैठते हो बैठ जाओ भीतर, थोड़ा राजमन लो पियो भी नहाओ भी, देख कैसे आफत मिटे डूबी लगा, जल्दी बाहर निकल के पावर पकड़ो जल्दी। तो भक्ति करके भगवान का पूजन करते हैं, वे तो बैसाख के महीने स्नान करते हैं और भगवान के भैर रखते हैं, भय रखते हैं, वे माघ के महीने स्नान करते हैं, अकेले दोनों का होता है। तो उसमें भक्ति रस नहीं होता, भक्ति में जो रस है वो प्रकट नहीं होता, गंगा जी में जो शांति है वो माघ के महीने नहीं होती, अनुभव में आनी आती, वैशाख के महीने अनुभव आता, एक बाहर से तप रहे और जहां जा गंगा जी में डुबकी लगाते हैं भीतर जब पी लेते हैं तो एक बड़ी विलक्षण शांति आती है। प्रत्येक समय महात्म होता है अप्रतिशत दोनों का, परंतु उसमें विलक्षणता है। ऐसे भाव भक्ति पूर्व गुरु का पूजन करता है, मूर्ति का पूजन तो मस्त हो जाए, पूर्ति करते मूर्ति का पूजन करते करे आनंद विभोर हो जाता है, नाचने लगता है, आनंद आने लगता है। और महाराज विशेष आनंद आ रहे, नाचे तो मूर्ति नाचने लग जाती है, मूर्ति भगवान नाचने लग जाते हैं, भगवान को आंदा जाता है, वे भी नेशनल तो भगवान का पूजन करते हैं, वो जड़ता का पूजन नहीं करते। अब आपका मन न लगे मत करो, हमारा कोई आग्रह नहीं। नारायण अरु नगर का रज बरा अनेक भावे आवो किधर से आगे अस्तवेक। नागर नगर में आपके दिल्ली में कई पूर्व से आते हैं, कई पश्चिम से, कई उत्तर से, कई दक्षिण से। अरे आपस में टेलीफोन करे वो तो पूर्व की तरफ दिल्ली है, वो कहते नहीं था पश्चिम की तरफ हम गए हैं, देख रहा पश्चिम की तरफ दिल्ली है। अरे दोनों सच्चे हैं और एक एक से विरुद्ध है, पर दोनों सच्चे। अपने बारे में जल्द से ठीक आ जाएंगे, अगर एक ही होता है। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संतदास घड़ी अलट के ढुरे एक ही ठोर। ऐसे अंत में एक तत्व ही मिलता है, तू उस तत्व की ही वे पूजन करते हैं। देखो भूख एक होती है और भोजन करने पर तृप्ति भी एक होती है, पर रुचि भी एक होती है। क्या कोई मिर्ची खाता ही नहीं और किसी को तो मिर्ची तेज हो, जलन हो, तब आनंद आता है। मिर्ची है ही ना, कहते क्या रख दिया ये कोई साग होता है, उसको सुहाता ही नहीं। तेजी की मिर्ची और खाता है करता है आनंद। अब पर तो एक बात बताओ आप, भूख एक होती है और भोजन करने में तृप्ति एक होती है। माने भूख एक हो दुख एक तरह का है, तृप्ति करने में सुख एक तरह का है, नतीजा सुख और दुख वो एक निकलता है। हम देखते हैं मनुष्य के मन के अनुकूल बातें मिलती है, एक पसंद आती तो हंसी आती, वो हंसुर हंसुर से हंसता है और मन के प्रतिकूल परिस्थिति रोता है। तो हंसने में भेद नहीं है, बोलने में भेद है, भाषा है। भाषा ये मारवाड़ी बोलता है तो बंगला बोलता है, ये तो गुजराती बोलता है। ऐसे हंसी मैंने आपने देखा, ये तो मारवाड़ी हंसी है भाई, ये तो पंजाबी हंसी है, ये प्रसन्नता तो गुजराती है, ऐसा देखा आपने। ओ प्रसन्नता में उसमें फर्क नहीं, रोने में नहीं है, ये बंगाली रोना रोता है, ये तो पूर्व स्थान की पूर्व की भाषा में रोता है। रोने का भेद नहीं है, हंसने का भेद नहीं है, भाषा का भेद है। ऐसे परमात्म प्राप्ति के बिना दुख होता है उसमें भेद नहीं है, और प्राप्ति होने पर आनंद होता है उसमें भेद नहीं है, परंतु रुचि में भेद है। कोई किसी की उपासना, कोई किसी नाम की उपासना, कोई किसी रूप की उपासना ये करता है, तो किसी का भोजन कैसा ही, किसी का भोजन कैसा ही है, पर तृप्ति एक होगी। आपको वो भोजन चाहिए, दूसरा भोजन करो आपकी जैसी रुचि वो करो, परंतु बाबा करो तो सही। कोई बातें ही करते हो, पूजन करते हो, कोई बातें करते हो, कोई बात नहीं हो रहा भाई। पर धन की बातें किए घर की भूख न जाए, दूसरे के धन की बात करने से घर की भूख नहीं मिटती। वो लखपति है, वो करोड़पति है, दिन भर करो एक कौड़ी भी मिलेगी, और काम करो मिल जाएगा, कुछ कुछ पैसा मिलेगा ही। ऐसे ही कोई बातें करे सुखी, ये सत है, ये चेतन है, ये आनंद है, ये जड है, ये है, करते रहो। पर तो लग जाओ सच्चे एकदम, देखो एक तमाशा विलक्षणता हो जाती है। तो ऐसे आप सच्चे लग जाए, किसी नाम में किसी रूप में आप लगे, पर लग कर देखे तो सही। रुचि नाम रेचितिजुकुटलाना पत जुषाम को रुचि तरह तरह की है, इसलिए उपासना तरह तरह की बताई गई। जिसकी जिसमें रुचि है वो उसी की उपासना करे, उसी स्वरूप से करे, तो उसको उसी तत्व की प्राप्ति हो। सज्जनों आप कृपा करो, जहां आपको लाभ दिखे वहां करो। अब सत्संग व्याख्यान कथाएं कई जगह होती है, उनमें भी देखा तो किसी की किसी कथा में आनंद आता है, किसी को किसी कथा में आनंद आता है, किसी को कोई व्याख्यान ऐसा लगता है, किसी को कोई ग्रंथ व्याख्यान सुनाता है। पुस्तिका में किसी को कोई सुहाता है, कोई किसी को कोई पुस्तक सुहाती है। अरे जहाँ आपका मन भगवान में लगे, संसार से जड़ता से उठे, वहां लग जाओ ठीक हो जाएगा। ऐसा जड़ता में लगे हुए तो काम और क्रोध और लोभ ये पैदा हो, सब इनसे कैसे छुटकारा हो? किसी उत्पत्ति विनाशी ध्यान दे, सुने, जो काम क्रोध ममता आसक्ति से रहित होना चाहते हैं उनसे मेरा कहना है कि उत्पत्ति विनाशील वस्तु को आप महत्व न दें। आप जानते हैं उत्पन्न होने वाली वो नष्ट होने वाली होगी, और संयोग जिसका होता है उसका वियोग होगा, जन्म होता है वो मरेगा। ये आपको ज्ञान रहते हुए उनमें आसक्त हो जाते हो, जो मिला है वो बिछुड़ेगा, तो मिलने में आनंद आता है कि 50-100 रुपये मिल गए आप, और चले गए तो दुखी हो जाए, 100 रुपये चले गए तो क्या, तो मिल गया क्या चला गया, पहले नहीं था बीच में मिला फिर नहीं रह गया, पहले जैसे हो गए बीच में ही मिल गया। रजीव जी महाराज जा रहे थे गांव में तो बीच में एक रस्सा पड़ा था किसी गाड़ी वाले का, गिर गया तो रस्सा उन्होंने उठा लिया, चलो भाई कोई मिल जाए तो उसको दे देंगे, नहीं तो कपाई फैलाएंगे अपन, क्या ऐसा कर कंधे पर रख लिया और अपने भजन ध्यान मस्त में चलते चलते वो खिसक करके गिर गया। पता रहे नहीं बाबा जी को, गांव में पहुंचे देगा और रस्सा तो नहीं है, रस्सा नहीं है तो वो बोले कि पहले जैसो मन कर रहे भाया, रज्जु रस्सा मूंज का पाया न पाया, गांव में से चले वैसे गांव पहुंच गए, बीच में आया बीच में गया, तीरा क्या गया, 25 वर्ष का जवान मरा, तो 26-27 वर्ष पहले थे वैसे हो गए, बीच में रस्सा मिला और खसक गया, अब तीरा क्या चलेगा, रोने लगता मेरा चलेगा, अरे तीरा कैसे चला गया, तू पहले जैसा हो गया बीच में आया बीच में गया, तू तो है जैसे ही रहा बीच में आना जाना हो गया, अब रो गया। तो ये जो काम क्रोध कब होता है, जो नाशवान को अभिनाशी मान लेता है, असत को सत मान लेता है, उत्पत्ति विनाशशील को स्थायी मान लेता है, अप्रिय को प्रिय मान लेता है, निरादर निरादरणीय तत्व का आदर देता है, जानता है कि उत्पत्ति विनाशशील है परंतु उसको महत्व बुद्धि से देखते हैं, तो क्रोध पैदा उस महत्व बुद्धि से होता है। बाबा कौन महत्व बुद्धि, जो आप जानते हैं जड़ फिर भी महत्व बुद्धि रहते हैं, रुपयों को उत्पत्ति विनाशील मानते हैं, केवल लेन देन का एक साधन मानते हैं, उसको भी बढ़िया मान लेते हैं और खर्च करते ही नहीं, तो राजद्वेष नहीं है तो क्या होगा, तो भूल तो यहाँ हुई है, अपना मान लेते अपने लिए उपयोगी मान लेते वो चला जाता है, दुख होता है। तो आप उसको है जैसा मानो, है जैसा मानने का नाम ज्ञान है, उत्पत्ति विनाशील जड़ को उत्पत्ति से ना मानो उन्हें क्या आपका आता है क्या जाता है, क्या आ गया क्या चला गया, ना आया हर गया वो तो है जैसा गया सही है, इसमें सुख और दुख क्या बात है। अरे बचपन में कंकर पत्थरों के लिए ठीकरी के लिए लड़ते थे, आज उसको क्या मानते हो आप, अरे क्या इसमें पड़ा है, पर उस समय मेरा ऐसा मेरा इसने ले लिया, शिकायत करते क्या है, महत्व दे दिया, महत्व लड़ाई होगी सुनो, ऐसे रुपये पैसों को मोरों को सोने को चांदी को रत्ना को आपने महत्व दे दिया, और महत्व दे दिया लड़ते आप इसमें, जमीन जायदाद को महत्व दे दिया, दिया वो आपका वही खेल रह जाता है, राम नाम सत बोल जाती है, क्या साथ में चला बताओ, पर रुपया बड़े भारी है महत्व दे दिया, तो महत्व उसके उपयोग का है, वस्तु का थोड़ा ही है, रुपया भर लो खर्च मत करो क्या फर्क है, आपके रुपया हो तो ना हो तो क्या फर्क है, अगर आपके उपयोग में नहीं आता और धन आपके पास में लाखों रुपया है परंतु आप अपने काम में लगाते ना दूसरे काम में खर्च करते, तो उन रुपयों से आप धनवान हैं क्या, उन रुपयों से हमें धनवान नहीं है क्या, उसी उन्हीं रुपयों से हम धनवान हैं, क्यों खर्च आप भी नहीं कर सकते हम भी नहीं कर सकते, आप में हमारे फर्क क्या, फर्क यह है कि रात में सुहा दौड़ेगा तो आपकी नींद खुल जाएगी और हमारे नगर आवाजे तो नहीं खुलेगी मौज, ये फर्क होगा। और फर्क क्या आप तो आप रो जाएगी अपना मान ले। उस संतों ने वो महत्व नहीं दिया, महत्व क्या है उसके उपयोग को महत्व दिया है। रामा माया राम की मत दे आड़ी पाल, राम जी माया पाल क्यों बांधता है अपने पास में रखूंगा। रामा माया राम की मत दे आड़ी पाल, आए जो ही जान दे परमात्मा रेखाल, परमात्मा जान दे बहन दे। हमारे महाराज कह रहे आई बलार नहीं चला, बस ये बला आई भी पैसा चला दे जो उपकार में लगा इसमें लगा दिया, बस आई बला नहीं चला। अब क्या रोके उसको क्या करेंगे तो मौज आपके रहेगी, रुपया तो आपके, बला मानो तो बढ़िया मानो तो और घटिया मत वो तो रहेगा नहीं आपके साथ। कफन में किसी ने जेब बनवाई है तो ये तमाशा है। आप महत्व देते हैं इसको, साथ कुछ जाता नहीं तो पहले से क्या है इसको देखे और जाना पड़ेगा। भाई हम रुपयों के साथ रहे, रुपये हमारे साथ रहेगा ऐसा रहेगा? अरे रहेगा नहीं, इतनी बात नहीं है। जिन लकड़ों में जलना है वे वृक्ष अब नहीं उगेंगे, वे लकड़े तैयार है अभी, और उठाने वाले भी अब नहीं जन्मेंगे, वे भी जवान तैयार है उठे। और जिस बांसों पर बंधना होगा वो बांस भी तैयार है, मूंज भी तैयार है, कफन का कपड़ा भी बन गया है। थोड़ा सा घड़ी से आपकी धोखनी चलती है, जब चलती बंद हो सर सब सामग्री इकट्ठी हो जाएगी और बनने की जगह भी रिजर्व आपकी तैयार है। सामग्री सब जाने की तैयारी हो रही है बलने की तो सब। अरे यहाँ बैठा हुआ कहते हैं अब ये सच है नहीं असत है चेतन है। अरे क्या चेतन जड़ करता है, मर रहा है। अभी वो दिन आ जाएगा राम नाम सत है, तू बातें करता है इधर उधर देखता रहिए, समय जा रहा है ना। बलने की सामग्री सब तैयार हो रही है, लकड़ा और मनुष्य बासर और मुंह और कपड़ा सब तैयार है, हांडी भी तैयार है जो आग ले जाते, क्या कमी बताओ। लेजर वाला नहीं तैयार, केवल तेरी आंखें टिमटिमाती है, धोखनी चलती है, इसको देखते हैं ये बंद हुई। आप पड़ोसी कहते हैं क्या करते हो इतनी देर हुई, हाथ उठाया नहीं, जल्दी करो उठाओ जल्दी ले जाओ, ये दशा होने वाली है। ये होगी तो पहले चेत करके अपने परमात्मा की प्राप्ति कर ले, शरीर से अपने चिन्मयता का अलग अनुभव कर ले, फिर क्या है जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत। अब कोई धोखा नहीं, जिसके लिए मानव शरीर मिला वो शरीर हमने प्राप्त कर वो प्राप्त कर लिया। अब शरीर रहे तो मौज, जावे तो मौज, अभी तो आनंद जो काम करना था वो कर लिया। भय क्यों लगता है, मरना तो जरूर पड़ेगा, फिर बढ़ने भय लगता है कि करने का काम नहीं किया तो भय लगता है, करने का काम किया भय क्या लगता है। स्कूल में पढ़ते हैं तो कोई पूछने आवा है तो भय लगता है, छोरे के पीछे छुप कर बैठते हैं क्योंकि याद नहीं है। अरे याद है वो यूं हाथ करता है, वो फैल जाता है अगर सामने मेरे को पूछो पाठ ठीक पढ़ा हुआ है, भय क्यों लगेगा। कोई पूछे उसमें आनंद आता है कि मेरे को पूछे तो सब में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, मेरे को पूछो। ऐसे परमात्मा तो वो प्राप्त हो जाएगा जिसकी मस्ती आती है, कोई मौत आए तो आनंद आता है। कभी आज समझे डर पे मरण से, अरे मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, सब दे डरे मरण से, अरे मेरे मरण आनंद। अब काम कर दिया, अब यह बैठे क्या करेंगे, अब बैठे क्या करेंगे, तो दूसरा कोई पूछे दूसरे को बात बता देंगे, अपने तो कोई काम है नहीं बाकी। और कोई तो हलो भाई तुम भी देख लो कैसी मौज की बात है। वो समय मिला है भाइयों बहनों, वो समय मिला है कि जिसमें आप पूर्णता का अनुभव कर ले, वो मिला है तो उस पूर्णता का अनुभव कर लो, फिर करना बाकी नहीं रहेगा, कृत कृत्य हो जाओगे, ज्ञात ज्ञात भी हो जाओगे, प्राप्त प्राप्त भी हो जाओ, तीन चीज हो जाएगी। न करना बाकी रहेगा, न जानना बाकी रहेगा, न पाना बाकी रहेगा। और जब तक तो कुछ भी बाकी है करना, तब तो पूर्णता पूर्णता पूर्ति नहीं होती। जब तक जानना बाकी है तब तो पूर्ति नहीं होती, पाना बाकी है तब तो पूर्ति नहीं होती। ज्ञान से तो ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, और योग से कर्तव्य प्राप्त कृत्य हो जाता है, और भगवान की भक्ति से प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। तीन शक्ति है, जानने की, मानने की, करने की। इनका सदुपयोग होगा, कल्याण हो जाएगा। दुरुपयोग करते रहो, अनंत जन्म बीत जाएगा, होगा कुछ नहीं। घानी का बैल होता है कोलू का, सारी उम्र चलता है, पर रहता वहां का वही, एक कदम बाहर नहीं गया, वहां का वही रहा। ऐसा चलता है सारी उम्र, मन चलता है आंखों को पट्टी बांधे हुआ, ऐसे आंखों के पट्टी बांधी है वो रहा। पुनः प्रभातम पुनर्विचरण, लंबा रास्ता, इतना गोल रास्ता है, गोल है, सब गोल ही है, उसे कोई है नहीं, तत्व नहीं है भाई। तो परमात्मा में लग जाओ, पार कर जाओ, निहाल हो जाओगे। तो उस तत्व को समझो आप, जिस विषय से समझो, मूर्ति पूजा से समझो, सत्शास्त्र से समझो, सत्पुरुषों से समझो, अब सदविचार से समझो, सबके ऊपर सब सुख दे करके पहुंचो, उसको समझो। जैसे आपके जो समझ ठीक में आए उसी तरह से आप करो, पूर्ण हो जाएगा काम। इसमें शंका को संदेह नहीं, ये प्रार्थना। अब बोलो संदेह हो तो पूछो, सच्ची बात है, एकदम खूब मौज की बात है, एकदम आनंद की बात। मौका मिला है, बड़े सुंदर। काम करो दो बाधिक है, ये मिर्जा आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं है। जड़ता को आप महत्व मत दो, नहीं रहेगा। नारायण 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 नारायण।
लागे वृंदावन नीको माई माने, लागे वृंदावन नीको माई माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको माई माने, माई माने, लागे वृंदावन नीको माई माने, लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को माई माने, दर्शन गोविंद जी को माई माने, लागे वृंदावन नीको माई माने, लागे वृंदावन। हाँ निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को, भोजन दूध दही को माई माने, भोजन दूध दही को माई माने, लागे वृंदावन नीको माई माने, लागे वृंदावननी को रतन सिंहासन आप विराजो रतन सिंहासन आप विराजो मुकुट धरो तुलसी को माई माने मुकुट धरो तुलसी को माई माने लागे वृंदावननी को माई माने कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को माई माने शब्द सुनत मुरली को माई माने लागे वृंदावननी को माई माने लागे वृंदावननी को मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर भजन बिना नर फीको माई माने भजन बिना नर फीको माई माने लागे वृंदावननी को 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 माई माने